बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके हमारे उन भाई बहनों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों कुरिन्थियों की पत्री, जो नए नियम के एक पत्री है, उससे अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि कलीसिया में समस्या थी और उस कलीसिया की समस्याओं को देखते हुए पौलुस ने उन्हें पत्र लिखा। प्रिय मित्रों, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में उत्पन्न कलह और झगड़े तथा मतभेदों के कारण को पूछता है। तो आइए अब हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसके 13 पद। पहला कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? मेरे प्रियो, उत्तर स्पष्ट है। निसंदेह मसीह विभाजित नहीं है। मसीह में एकता को तोड़ने वाली कोई भी बात उचित नहीं है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। मसीह का क्रूसीकरण मसीह एकता का दृढ़ आधार है। अन्य किसी बात पर मसीह एकता स्थापित करना तर्कहीन और मूर्खता का काम है। लिखा है, तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला। मेरे विचार में यहाँ पौलुस पानी के बपतिस्मे के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वह तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही होता है। जी हाँ, उसका संदर्भ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से है। अतः वह पूछता है, क्या तुम्हें पौलुस के नाम में बपतिस्मा मिला? निश्चय ही वे कहेंगे, कदापि नहीं, हमने तेरे नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है। हमें मसीह की देह में सम्मिलित करने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना होता है और यह काम मनुष्य नहीं कर सकता। देखिए, पौलुस उनके विचारों को मनुष्य पर केंद्रित होने से हटाकर मसीह में ले आना चाहता है, उन्हें मसीह में लीन करना चाहता है। मित्रों, मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं मनुष्य के साथ, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, सहभागिता कर सकता हूँ, यदि वह मुझसे मसीह के केंद्र में हो करके भेंट करे। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे पढ़ते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। मेरे मित्रों, यहाँ वह पानी के बपतिस्मे के बारे में कह रहा है। वह कहता है कि उसने तो पानी के बपतिस्मे में भी निपुणता प्राप्त नहीं की ताकि कोई कहे कि वह अपने नाम से बपतिस्मा देता है। ऐसी स्थिति संकटकालीन हो सकती है। मित्रों, यहाँ पर देखिए, वह मसीह को केंद्र में रखने पर ही बल दे रहा है। आज भी अनेक जन हैं जिनके विचार में पानी का बपतिस्मा उनका उद्धार करता है या उसमें कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे मित्रों, हम पहले कुरिन्थियों की पत्री 1:16 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और मैंने स्तेफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया है। जी हाँ, पौलुस पानी के बपतिस्मे को इतना कम महत्व दे रहा है कि उसे स्मरण नहीं कि उसने किसी को बपतिस्मा दिया है। तब हम आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1:17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूश व्यर्थ ठहरे। मेरे मित्रों, आज हमें यह देखना अति महत्वपूर्ण है कि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो छोटी छोटी बातों के कारण विभाजन ले आते हैं। यही कलीसिया में कलह और विभाजन का कारण होता है। कुरिन्थ की कलीसिया भी इसी पथ और प्रवृत्ति के कारण विभाजित थी। कुरिन्थ में 3 प्रचारक, पौलुस, अपोलोस और कैफा जो पत्रस था, ने सुसमाचार सुनाया जिसमें एकता का गुण एवं सामर्थ था। उनके द्वारा सुनाया गया सुसमाचार एकता का था, विभाजन का नहीं। परंतु क्योंकि उनका विश्वास शिशु अवस्था में था, अर्थात ये नए विश्वासी थे, उन्होंने मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया, और अब पौलुस उनका ध्यान विभाजन और पंथ निष्ठा से हटाकर मसीह की ओर आकर्षित कर रहा है। मेरे मित्रों, उस युग में कुरिन्थ ही नहीं, अनेक अन्य स्थानों में दर्शन शास्त्र पर अधिक बल दिया जाता था। इसे हम आगे चलकर इसी अध्याय में देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1:18। लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ, क्रूस भी विभाजन लाता है, परंतु उद्धार पाए हुए और उद्धार नहीं पाए हुए मनुष्यों का। वह उद्धार प्राप्त मनुष्यों में विभाजन नहीं लाता है, उसे तो एकता का कारण होना है। हॉलैंड के एक कलाकार ने एक चित्र को बनाया जिसका नाम था अंतिम न्याय। उसमें परमेश्वर का सिंहासन दिखाया गया है और उद्धार से रहित आत्माएं अंतरिक्ष से गिर रही हैं, और गिरते समय वे एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, और यह उस संसार का चित्रण है जो आज मनुष्य का जीवन लक्ष्य है। वह इसी के प्रति प्रयत्नशील है। मेरे प्रियो, ये उद्धार से रहित मनुष्य एक हो जाना चाहते हैं, और अंतिम दिनों में वे एक महान संगठन को तैयार करेंगे, परंतु कलीसियाई वातावरण और आधुनिक विचारों की प्रवृत्ति के विरुद्ध मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को मनुष्यों में विभाजन करने वाला कहा है। विभाजन रेखा क्रूस है। नाश होने वालों के लिए क्रूस का प्रचार मूर्खता है, परंतु उद्धार प्राप्त मनुष्यों के लिए वह परमेश्वर का सामर्थ है। जी हाँ, पौलुस स्पष्ट कहता है कि उसका प्रचार सांसारिक बुद्धि, वाक्पटुता, मतभेद या धारणाओं या सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। वह तो सीधा सीधा मसीह का क्रूस प्रकट करता है। इसके द्वारा उद्धार प्राप्त मनुष्यों में एकता स्थापित होती है। वे जो नाश हो रहे हैं उनके लिए मसीह का क्रूस मूर्खता है, परंतु उद्धार प्राप्त मनुष्यों के लिए वही क्रूस परमेश्वर का सामर्थ है। मेरे प्रियो, मसीह का क्रूस संसार को विभाजित करता है, कलीसिया को नहीं। हम 1 कुरिन्थियों 1:19-20 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि सुसमाचार मूर्खता का प्रचार नहीं है, वह प्रचार की मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1:22-23 पद में पढ़ते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, पौलुस मानव जाति को दो जाति वर्गों में बांटता है, यहूदी और यूनानी। यहाँ यूनानी से अभिप्राय है अन्य जातियां। वह इस विभाजन को स्वीकार करता है। मित्रों, यहूदी धर्म के प्रतीक थे क्योंकि उनका धर्म परमेश्वर द्वारा दिया गया था। यहूदी सोचते थे कि उनके पास सत्य है, और था भी, जहां तक पुराना नियम भूमिका में है। परंतु उनकी समस्या थी कि उनका धर्म विधियों तक ही सीमित रह गया था। वे धर्म शास्त्र की अपेक्षा प्रथाओं को अधिक मानने लगे थे और उसके पालन में उलझ कर रह गए थे, और यही उनके लिए धर्मशास्त्र का अनुवाद था। इस कारण सामर्थ चला गया था। जब यीशु आया तब उन्होंने धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ा, वरन यीशु से चिन्ह मांगने लगे। मत्तीर सुसमाचार 12:38-40 पद में हम देखते हैं, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 दिन और 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसी ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उन्हें अपने पुनरुत्थान का चिन्ह दिया था। यूनानी अन्य जाति थे, वे दर्शन शास्त्र के प्रतीक थे, वे ज्ञान के प्रेमी थे। उनका कहना था कि वे सत्य की खोज में हैं। वे जगत का विश्लेषण कर रहे थे कि सत्य उभर आए। वे तर्कवादी थे और यहूदी प्रथाओं में फंस कर रह गए थे, तो यूनानी तर्क में खो गए और तर्क में बंध गए। यीशु के आगमन से 400 वर्ष पूर्व यूनान ने इतिहास में ज्ञान और कला की ऐसी चरम सीमा प्राप्त की कि आज भी मनुष्य उससे प्रभावित है एवं विस्मित है। परंतु यीशु के आगमन तक यूनान की गरिमा का अंत हो गया था। पेरिक्लेस, अनावक्सागोरास, थेलस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आदि ने अपनी पाठशालाएं स्थापित करके छोड़ दी, जिन्हें दर्शन शास्त्र में इंद्रियों द्वारा सुख पाना, एपिकोरियन स्टोइक सुख दुख के प्रति नितांत उदासीनता के विचार कहते हैं। अरस्तु के अनुयायियों को पेरिपाटेटिक अर्थात भ्रमणशील कहा जाता था। यीशु के समय तक ये सब विलोप हो गए थे। जी हाँ, लगभग 2000 वर्ष तक दर्शन शास्त्र निष्क्रिय एवं फलहीन रहा था। इसके बाद वेकन होबस और डेस्कार्टेस जैसे पुरुषों के कारण बहुत कम समय के लिए महान विचारकों का उदय हुआ। इस युग को बुद्धि का युग भी कहते हैं। इसका भी अंत हो गया, परंतु आज का मनुष्य भी वैसा ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बुद्धिमान है। मेरे प्रियो, भाग्यवादी पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? वेकन ने भी यही प्रश्न पूछा था, और आज भी दर्शन शास्त्र यही प्रश्न पूछ रहा है। दर्शन शास्त्र में जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। जी हाँ, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मेरे प्रियो, किसी ने दर्शन शास्त्र की व्याख्या इस प्रकार से दी है, अंधेरे कक्ष में एक अंधा मनुष्य काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो वहां है ही नहीं। यूनानी ज्ञान के खोजी थे। आज भी मनुष्य किसी सिद्धांत या सूत्र की खोज में लगा है। वह सोचता है कि विज्ञान के द्वारा वह जीवन के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज निकालेगा या पाएगा। क्या आप सोचते हैं कि मनुष्य के पास जीवन संबंधित प्रश्नों के उत्तर हैं? मुझे एक पत्रिका में एक कथन मिला जिसमें मेरी रुचि जागी। सत्य यह है कि आधुनिक मानव अपनी उपलब्धियों से अत्यधिक प्रभावित है। अंतरिक्ष जो पृथ्वी से कुछ ही मील की दूरी पर है, उसमें रॉकेट भेजने के लिए समग्र विचारों और प्रयासों की आवश्यकता होती है, परंतु हम इस विषय को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। पृथ्वी से कुछ ही मील ऊपर उड़ने वालों को हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, तो स्पष्ट रूप से शब्द का गलत उपयोग है। परंतु मनुष्य अंतरिक्ष यात्री तब तक नहीं कहलाएगा जब तक वह सितारों के मध्य विचरण न करे। और यह बोध होना अति महत्वपूर्ण है कि अधिकांश सितारे हजारों मील दूर हैं। रूस के नागरिक तो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने में और भी अधिक बेलगाम है, जो अपने लोगों को ब्रह्मांड यात्री कहते हैं। उन्हें कोई कहे तो अच्छा नहीं होगा। हे अकिंचन, मानव अपने आप को ऐसा गंभीर मत बना। मेरे प्रियो, आज का मनुष्य सोचता है कि उसके पास उत्तर है। आज ज्ञानवान कहाँ है? यह एक अच्छा प्रश्न है। परमेश्वर ने तो मूर्खों को संसार में बुद्धिमान बनाया है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मेरे मित्रों, यह एक महान उक्ति है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। जी हाँ, यह सच है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग क्रूस के प्रचार को मूर्खता की बातें कहते हैं। यहूदियों के लिए क्रूस ठोकर का कारण था। वे चिन्ह देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें कोई मार्ग दिखाए। वे मार्ग चिन्ह चाहते थे, पथ प्रदर्शक चाहते थे। वे ऐसे मुक्तिदाता को ग्रहण कर लेते जो रोमी शासन का तख्ता पलट देता। क्रूस पर चढ़ाया गया मसीहा तो उनके लिए लज्जा का कारण था। क्रूस का अर्थ तो पराजय था, विजय नहीं। वे तो इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। रोमियों के पत्र 9 अध्याय उसके 33 पद में जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक के ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। और हम देखते हैं पत्रस लिखता है, पहले पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास रखते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। मेरे प्रियो, क्रूसित मसीह यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था। यूनानियों अर्थात अन्य जातियों के लिए क्रूस मूर्खता बुद्धिहीन की बात थी। वे उसे मूर्खता और असंगत और तर्कहीन विचार समझते थे। रोम में मसीह विश्वास का एक व्यंग चित्र पाया गया है, जिसमें क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति का सिर गधे का है। मेरे प्रियो, आज भी हमारे उद्धारकर्ता की निंदा की जाती है। जब पौलुस दर्शन शास्त्र का खंडन करता है, वह कुरिन्थ नगर में मसीह का प्रचार कर रहा है, और प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ, अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। क्या दर्शन शास्त्र मनुष्य को जीवन के मलकुंड से निकाल सकता है? उसके द्वारा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मित्रों, ध्यान दीजिए कि मनुष्य मूर्ख प्रचार से नहीं, मूर्खता के प्रचार से उद्धार पाता है, क्रूस के प्रचार के द्वारा। यह विधि नहीं, संदेश है, जिसे प्राकृतिक मनुष्य मूर्खता समझता है। मनुष्य आज भी इसका प्रत्याग करते हैं। आज संसारिक बुद्धि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या अन्य अनेक कार्यक्रम तैयार करवाती है, या संसारिक बुद्धि मनुष्य को शिक्षा प्रदान करके समस्याओं से उभारना चाहती है। क्या मैं कह सकता हूं कि मनुष्य को आज जिस बात की आवश्यकता है वह है सुसमाचार। सांसारिक ज्ञान ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। मेरे मित्रों, अपौलुस मनुष्य के एक और वर्ग का उल्लेख करता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, ये चयनित जन हैं। उन्होंने निमंत्रण को सुना ही नहीं, स्वीकार भी किया। उन्होंने मसीह के क्रूस में परमेश्वर का सामर्थ और बुद्धिमानी को देखा है, जिसके कारण उनका जीवन बदल गया और वे नई सृष्टि हो गए। प्रभु यीशु ने 11 पुरुषों को तैयार किया और फिर तार्शीस के शाऊल को बुलाया और उन्हें भेजा। वे कुरिन्थ के पाप में सुसमाचार लाए और इफिसुस के धर्म तंत्र में सुसमाचार सुनाने को गए। आज 2000 वर्ष से सुसमाचार संसार में सुनाया जा रहा है, जो मानव जाति की एकमात्र सहायता एवं आशा है। फिर भी लोग इसे सुनना या ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। यह क्या ही दुखद बात है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 24 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। जी हाँ, कुछ लोग मसीह को ग्रहण करने वाले प्रसिद्ध मनुष्यों को ही महत्व देते हैं, अभिनेता, औद्योगिक अगुए और सरकार के प्रतिष्ठित लोग। परंतु परमेश्वर साधारण मनुष्य पर ध्यान देता है। वह आप और मेरे जैसे साधारण मनुष्यों को बुला रहा है। वह चाहता है कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति प्रभु के पास आ जाए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं कि वे मूर्ख हैं। वे संसार को मूर्ख प्रतीत होते हैं। वे दुर्बल नहीं हैं। संसार उन्हें दुर्बल समझता है। यह परमेश्वर की रीति है। वह छोटे मनुष्यों को चुनता है जिसे संसार कुछ भी नहीं समझता और उसकी दृष्टि में वह कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, हमारे पास तो महिमा के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि वे घमंड न करने पाए। पहला कुरिन्थियों की पत्र 1 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मेरे मित्रों, वह हमारी आवश्यकता का सब कुछ है। काश मैं आपको यह समझा पाता। वह हमारे लिए ज्ञान बनाया गया। वह हमारी धार्मिकता है। वह हमारा शोधन एवं मुक्ति है। आपको आज जिस बात की भी आवश्यकता है, आप उसे उसमें पाएंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसका 31 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। मेरे मित्रों, हमारी महिमा प्रभु में होना चाहिए। हमें आज प्रभु यीशु मसीह में गौरव करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस में गौरव करते हैं? आप किस बात का घमंड करते हैं? क्या आप अपने शिक्षा पर घमंड करते हैं, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, अपने धन पर घमंड करते हैं, अपने अधिकार पर घमंड करते हैं, या अपने पद पर घमंड करते हैं? आप आज किस पर घमंड करते हैं, या अपने चरित्र पर घमंड करते हैं? मेरे मित्रों, आपके पास घमंड हेतु अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं, परंतु हम मसीह पर घमंड कर सकते हैं। वह सब कुछ है जो हमें चाहिए, क्योंकि वही हमें सब कुछ देता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज ये प्रश्न मेरे लिए और आपके लिए है। मुझे और अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि आज हम किस पर घमंड करते हैं। ज्ञान पर, धन संपत्ति पर, परिवार पर, अपने ओहदे पर, किस पर? परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने निकटता में रहने के लिए बनाया है, ताकि हम उसके साथ संगति कर सकें। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात का स्मरण दिलाता है कि वे परमेश्वर के निकटता में क्या हैं। जी हाँ, वह कहता है कि हम सिर्फ मसीह यीशु में घमंड करें। आज आप किस पर घमंड कर रहे हैं। प्रियो, आइए आज हम अपने मन और दिल प्रभु के हाथों में सौंप दें और उससे कहें, प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम आप में घमंड कर सकें, आपसे और अधिक प्रेम कर सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को और लाभ को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। तेरे सिवा
जग में मस्ती